हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका और बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मेरा मन से मैं चाहती थी कि इस तरह का कोई प्रश्न आए तो मुझे इस चीज को क्लियर करने का समय मिले, क्योंकि लेक्चर में इतना समय नहीं होता है, लेकिन प्रश्न तो आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको सुनना होगा। तो आपका प्रश्न है कि शरीर तो जरिया है, जब इसके अंदर आत्मा होती है तो ही कार्य पॉसिबल है। जैसे अगर हम बंदूक से या किसी हथियार से मर्डर करते हैं तो उस वीपन को सजा नहीं मिलती है, परंतु संसार में यदि किसी के शरीर को कष्ट मिलता है तो हम बोलते हैं कि कर्म का फल है। या फिर यहाँ पर शरीर को सजा क्यों मिलती है? संसार में स्थूल शरीर को सजा मिलती है, नरक में या स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर को मिलती है। तो जब करने वाला आत्मा है, जब तक आत्मा उसके अंदर नहीं होगी तो वो कार्य नहीं करेगा, तो फिर शरीर को सजा क्यों मिलती है? एक्सलेंट क्वेश्चन। अब इसका आंसर जो है वो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता 3rd अध्याय श्लोक नंबर 42 में बोलते हैं। भगवान कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42, अगर प्लीज आप देखोगे, आपको ये बहुत है ना गुप्त है और बहुत थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, लेकिन आपको समझना है। भगवान कहते हैं, इंद्रियाण ही पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यः परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सः। भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियों की उपेक्षा, जो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। यहाँ पर भगवान ने बताया कि आत्मा जो है उसके होने से ये सब कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आत्मा के अस्तित्व से कर रहे हैं, लेकिन अपराध आत्मा नहीं कर रही है। अपराध कौन कर रहा है? वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। देखो उससे पीछे जाएंगे ना 43.40 में, तो भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि ही मनोबुद्धिर अस्यादिष्ठानुमुच्यते एतैर विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम की निवास स्थान है। अब देखो, इच्छा की इच्छा जब आपके हृदय में होती है ना, तभी हम अपराध करते हैं। तो अपराध कहाँ से हो रहा है? कौन कौन कर रहे हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि। पहले क्या होता है, इंद्रियां देखती हैं या कोई चीज, जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां ना, वो अगर खुद अकेले देखती रहे ना, आंख अगर देखती रहे तो वो अपराध नहीं कर सकती। उसका कार्य देखना, वो कोई भी रूप देख रही है, कोई दृश्य देख रही है, वो तब तक अपराध नहीं करेगी जब तक उसके अंदर मन सम्मिलित नहीं हो। फिर जब मन देख ले, जैसे कोई चीज देख लो और मन उस पर अटक गया, तो क्या बोलेगी? मुझे ये चाहिए, मुझे किसी भी सूरत पे, बाय हुक एंड क्रुक आई वांट टू गेट दिस। जो भी आइटम आप देख रहे हो उसको आप, जब मन जब तक नहीं था तो इंद्रियां देख रही थी बहुत सारी, जैसे हम हाइपर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। और उस बड़े अगर बिग मॉल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजों पे, सब में हमारा मन नहीं आएगा, लेकिन एक चीज अचानक से हमारी नजर पड़ी और मन में आया कि मुझे ये देखनी है, मुझे ये खानी है, मुझे इसको यूज करना है, तो फिर फौरन बुद्धि क्या करेगी? उसमें रखा बुद्धि, इस काम बुद्धि क्या करेगी? वो आप डिसीजन लेगी कि किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जाए। फिर गलत हो रहा है काम या बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों के इस संयोग से मन जब आ जाता है तो फिर हमें, हमारी बुद्धि जब इच्छा इतनी बढ़ जाती है ना, तो हमारा दिमाग जो है वो सही निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि मन उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है तो सही निर्णय नहीं ले जाते हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं, इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। वास्तव में जीव आत्मा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर अज्ञानता नहीं है, लेकिन क्योंकि काम जो होता है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें पहले ही बता दिया श्लोक नंबर 37 में बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापात्मा विद्धये नमे हवेरणम, कि हर कोई अपराध जो हो रहा है उसकी मेन वजह क्या है? हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर देता है और इस संसार का सर्वभक्षी महापापी शत्रु। यानी सबसे क्या, पहले क्या अध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, आप किसी चीज को देख रहे हो, सबसे पहला जो गलती कर रही है वो कर्म ज्ञान इंद्रिय ये कर रही है, उसको गलत चीज दिखने में आई, उसने देखी और मन उसके साथ सम्मिलित हो गया कि नहीं मुझे ये चाहिए, फिर बुद्धि क्या करेगी, कार्य करना शुरू कर देगी कि हाँ मुझे किस तरह से ये चाहिए। ये मन बुद्धि और ये इंद्रियां जो है वो मिलके कार्य कर रही है, ठीक है, ये मिलके कर रही है। कैसे कर रही है, जब ये कार्य करती हैं तो उनके द्वारा, यहाँ पर भगवान ने बताया श्लोक नंबर 43.40, देखो ये सारे श्लोक में इसका आंसर है, आपको थोड़ा सा सीरियस होके देखना है। भगवान कहते हैं इनके द्वारा यह कामजीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। अब असल में अगर आत्मा नहीं होती इस शरीर के अंदर तो आंखें खुली होंगी ना, फटी हुई होंगी ना, फट जाती है ना कभी कभी, तो भी वो देख रही होंगी, लेकिन मन और बुद्धि, अगर कभी ऐसा भी हो ना, मन और बुद्धि भी अगर उसके अंदर होते ना तो भी अगर आत्मा नहीं होती तो वो कार्य नहीं कर सकती। लेकिन आत्मा वास्तव में क्या है, ज्ञान से प्रकाशित है, लेकिन मन के जो विचार हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं ना, उसने उसके रियल ज्ञान को ढक दिया है। और आत्मा क्या समझ रही है कि इन इंद्रियों को खुश करके ही मुझे मजा आएगा, ठीक है। ये अज्ञान वास्तव में हमसे, हमारे सारे दुखों की जड़ जो है वो अज्ञान है। अब ये हो कैसे रहा है, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगी ना, आपको पता चलेगा, उससे एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे एक रथ होता है, उसके पांच घोड़े होते हैं, ठीक है, ये पांच घोड़े क्या है, इंद्रियां हैं। वास्तव में हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां जैसे हम ज्ञान लेते हैं, यानी कि खुद ब खुद उनसे ज्ञान हासिल हो रहा है, जैसे आंख से देख कर ज्ञान लेते हैं कि भाई ये सामने जो मेरे दृश्य है, जो सीन है, वो अच्छा है, बुरा है या कौन सा है, आंख से देखकर हम बता सकते हैं कि सामने जो व्यक्ति है वो लड़की है, लड़का है, खूबसूरत है या अगली है, जो भी होगा, आंख से देखकर ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। कान से सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि जो आवाज आएगी तो आपको पता चलेगा कि किसी लड़की की आवाज है, कोयल की आवाज है या फिर किसकी आवाज है, तो ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद है नासिका, मतलब नोज, उससे सूंघ कर हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जो मैं खुशबू सूंघ रही हूँ वो किस चीज की खुशबू है, फ्लावर की, रोज की है या जैस्मिन की है, लोटस की है या किसकी है, कौन से फ्लावर की है या कोई चीज की है, हमें खुद ब खुद कैसे पता चलता है कि कुछ जलने की बू आ रही होती या कोई भी खुश, उससे हमें गंध का पता चलता है, सुगंध हो या दुर्गंध हो पता चलता है, ठीक है। और उसके बाद है कान्ना, त्वचा, त्वचा का मतलब होता है स्किन, स्किन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आपकी आंखें बंद हो और आपके हाथ पे कोई चीज रख दी जाए तो ठंडी ठंडी लगेगी तो आप बताओगे कि भाई ये ना बर्फ है या फिर गर्म लगेगी, या कोई भी चीज आप रखोगे तो आप हाथ में ऐसे करके आप पता चलता है ना, स्पर्श इंद्रिय आपको पता चलाती है कि ये कौन है, मेरे हाथ में कॉटन रखा हुआ है या क्या रखा हुआ है, कोई कड़क चीज होगी तो हम बता सकते हैं कटोरी है, प्याली है, प्लेट है, तो स्किन से हमें पता चलता है। और दूसरा है जुबान, ये जो रसना है ना, जिससे टेस्ट करके, जैसे आप आंखें बंद करो, मुंह खोलो, उसके अंदर कोई चीज डालो तो आप बता सकते हो कि मैंने ग्रेप खाया है, मैंगो खाया है या स्ट्रॉबेरी खाई है, तो ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये याद रखने का है, बाद में बहुत काम आएगा। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ठीक है। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, कौन सी है, वो इंद्रियां जिसे हम कार्य करते हैं, जैसे उनको मूव करना पड़ता है एक काम के लिए दूसरे काम के लिए, उसको मेहनत करनी पड़ती है। आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना को मेहनत नहीं करनी होती, वो खाली अपना स्पर्श करेंगे ना अपने विषय के साथ, उनको खुद ब खुद ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्म इंद्रियों को काम करना पड़ता है, जैसे हाथ, उनको आटा गूंदना पड़ता है और रोटी बनानी पड़ती है ना, और पैर, उनको चलना पड़ता है, हाथ, पैर, जिह्वा। अब ये टंग जो है ना, वो दोनों इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय तब है जब वो बात करती है, तब उसको बात करनी पड़ती है ना, तो काम करना पड़ता है। और टेस्ट इंद्रिय जब होती है, जब वो टेस्ट करती है, तब वो ज्ञान इंद्रिय है, ठीक है। अब हाथ से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं और जुबान से। इसके अलावा लिंग और गुदा, यूरिन और स्टूल पास करने के 2 इंद्रिय, ये टोटल हमारे पास 10 इंद्रियां हैं और एक मन। अब ये 10 इंद्रियां आपस में, ये घोड़े हैं, ये खुद से, इनके पास कुछ अक्ल नहीं है, वो कार्य कर रहे हैं अपने। अगर इनके पास मन और बुद्धि नहीं होते हैं तो ये, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इंद्रियां वास्तव में क्या है, मन है, क्या करता है ये 5 इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां ना जो हम देखते हैं वो घोड़े हैं, ठीक है। और उस रथ की जो लगाम है वो मन है। अब लगाम जहां छूटी, समझो
जो घोड़े हैं वो गलत दिशा में जाएंगे। जब तक लगाम को पकड़े रखा यानी कि मन को जब तक हमने कंट्रोल किया हुआ है तब तक वो सही चलेंगे घोड़े, लेकिन जैसे ही लगाम को ढीला छोड़ दिया तो घोड़े इधर उधर जाना शुरू कर देंगे और गलत कार्य करना आरंभ कर देंगे। इस लगाम को पकड़ने वाला जो सारथी है, अब इस ये तो लगाम है, वो सिर्फ लगाम है, मन जो है ना वो लगाम है, लेकिन उस लगाम को जिसने पकड़ा है ना वो बुद्धि है, वो डिसीजन लेगी, उसके बाद मन है ना अपना कार्य करेगा। मन पहले देख रहा है, उसमें अटैच भी हो रहा है, लेकिन जब तक बुद्धि सम्मिलित नहीं होती है, वो जब तक योजना नहीं बनाती है तब तक मन भी कुछ नहीं कर सकता। तो बुद्धि के द्वारा लगाम यानी मन को और लगाम के द्वारा घोड़े यानी इंद्रियों को वश में किया जाता है। समझ में आया? बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा घोड़ों को वश में किया जाता है। मतलब अगर सारथी ठीक हो तो रथ बहुत अच्छी जगह पर ले जाएगा। सारथी मतलब बुद्धि, जैसे अगर सारथी के हाथ से लगाम छूट जाएगी तो घोड़े न जाने कहाँ निकल जाएंगे। उसी प्रकार यदि मन की लगाम बुद्धि के हाथों से छूट जाएगी तो जीवन किसी नरक में चला जाएगा और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार लोगों को अब प्रश्न ये होता है कि बुद्धि को कैसे ठीक किया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते, कि अगर आप कंटिन्यूस मेरे नाम का जप करोगे तो आपकी बुद्धि परफेक्ट हो जाएगी, फिर वो बुद्धि आपका कभी भी मन की लगाम को ढीला नहीं छोड़ेगी और कभी भी आपकी इंद्रियां जो है वो गलत कार्य नहीं करेंगी। वास्तव में ये अज्ञानता है जो हमसे अपराध कराती है और मन, और ये आत्मा ही है, पनिशमेंट हमारी आत्मा को ही मिल रही है ना हमारी आत्मा को। अब ये तो मैंने आपको रथ बताया, रथ में क्या, पांच जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, जो लगाम है वो मन है और जो बुद्धि है वो क्या है, सारथी है। लेकिन सारथी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो इसके अंदर रथी बैठा हुआ है, रथी मतलब जो मालिक बैठा हुआ है इस रथ का, इस घोड़ों का, इस सबका जो मालिक बैठा हुआ है ना। अब ये तीन चीजें जो कार्य कर रही है ना, यानी इंद्रियां, मन और बुद्धि मिलकर जो भी कार्य कर रहे हैं, वो भुगतना किसको पड़ रहा है, जो अंदर आत्मा बैठी हुई है ना उसको भुगतना पड़ रहा है। अब वो बिचारी आत्मा अंदर बैठी हुई है, वैसे तो वो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन क्योंकि मादी जो प्रकृति के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मन जब विचलित हो जाता है और मन गलत डिसीजन लेता है, बुद्धि मन गलत चीज के विषय में सोचता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, और बुद्धि जो है वो गलत डिसीजन लेती है, तो उसका पूरा का पूरा जो है ना दुख किसको भोगना पड़ता है, जो अंदर सारथी बैठा हुआ है यानी आत्मा। अब क्या होता है कि आत्मा जो है उनको भुगतना पड़ता है, वो जब स्थूल शरीर में आता है संसार में, उसको आत्मा को, आत्मा ही तो भुगत रही है, कभी नरक में जाती है, कभी स्वर्ग में जाती है, कभी इस पृथ्वी लोक पर आती है, कभी जब तक आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वापस से ज्ञान उसका स्वच्छ नहीं हो जाता है, वापस से ये अज्ञानता दूर नहीं होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब तक जीव ये अपनी जो भूली हुई स्थिति को वापस याद नहीं कर लेता है, तब तक ये आत्मा ही भुगत रही। अब देखो, आप बोल रहे हो शरीर को दुख मिल रहा है, अब शरीर से आत्मा निकाल दो, फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके जला भी दोगे तो उसको दुख नहीं मिलेगा। शरीर को दुख तब तक मिल रहा है जब तक कि उसके अंदर आत्मा है, तो इनडायरेक्टली ये सजा उसी आत्मा को मिल रही है। इस शरीर के अंदर बैठे हुए भी और मन, बुद्धि, अहंकार जब वहां पर नरक और स्वर्ग में जाते हैं, तब भी आत्मा को ही दुख मिल रहा होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो नैनम छिदंती शस्त्राणि, भले उसको दुख नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है पता है, सबसे बड़ा दुख ये है कि आत्मा अपने कृष्ण से दूर है, सबसे बड़ा दुख है। भले यहाँ पर संसार में आपको क्या लगता है, किस चीज को दुख बोल रहे हो आप, यही ना कि संसार में किसी को कपड़े नहीं मिल रहे, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को दरिद्रता मिल रही, किसी को, ये दुख नहीं है। वास्तविक दुख ये है कि आत्मा अपने परमात्मा से, अपने कृष्ण से दूर है, सबसे बड़ा दुख ये है। तो अगर ये मेरा स्टेटमेंट है कि सारे कार्य आत्मा ही कर रही है, तो दुखी भी आत्मा ही हो रही है, लेकिन आत्मा क्योंकि उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको कभी खंडित नहीं हो सकती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चाहे नाम क्लेदियंत्या, तो न शोषयति मारुता, तो किसी न किसी शरीर के अंदर डालकर उसको सजा दी जाती है कि तुम भुगतती रहो, जब तक तुम अपने कृष्ण तक नहीं पहुंचोगी तब तक तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ये आत्मा जो है वो कंटिन्यूस स्ट्रगल करना चाहती है कि मैं कैसे अपने कृष्ण तक पहुंचूं, लेकिन मन बुद्धि और अहंकार ये जो इंद्रियां हैं वो उसको बार बार बोलती हैं कि नहीं, तुम भले जो भी कहो हम तो खुद को संतुष्ट करेंगे, तुम भले ये समझो ये रथ है ना, उसके घोड़े, उसकी लगाम और उसका ड्राइवर अंदर बैठी हुई आत्मा को हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं कि तुम्हारा भले दिल करता है मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम इस गाड़ी को मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, यहीं पर मजा करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से ये जो रथ है वो कहां जाके नरक में गिरता है, कहां गिरता है, उस बिचारी आत्मा जो अंदर बैठी हुई है उसको परेशान करता रहता है। और जब तक भगवान के पास नहीं जाते हैं, जब तक इन सारी चीजों से मन बुद्धि ईमान बुद्धि और इंद्रियों के साथ अपनी अटैचमेंट जो है आत्मा खत्म नहीं कर देती है और अपनी अटैचमेंट जो है वो भगवान के साथ नहीं लगा देती है, डिटैचमेंट जो है ना, जब तक हमारी इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों से जब तक हम आसक्ति को खत्म नहीं करेंगे तब तक आत्मा तड़पती रहेगी। आत्मा तड़प रही है, आत्मा अगर शरीर के अंदर रह रही है तो सबसे बड़ा उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपने भगवान से, अपने रियल स्टेट से, उसका शाश्वत नित्य धाम में एक शाश्वत कार्य है, आनंदमयी है, वो यहाँ पर परेशान है। आपको उसका कष्ट नजर नहीं आ रहा, शरीर का कष्ट नजर आ रहा है। शरीर को तो कष्ट मिल रहा है, वो तो एक कपड़े की तरह है, उसमें से आत्मा निकाल दो तो उसको कष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा भटक रही है। और आत्मा को ही सदगति देने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं इसको और भी डिटेल से बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।